नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक निजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थानों के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता की जा रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।